आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईशा गोयल है। मैं अपनी बीएससी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर रही हूँ और आज के इस ऑडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 6, जिसका नाम है सजीव एवं निर्जीव, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो आपके पेज नंबर 47 पे है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जनरली बात करेंगे कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव वस्तुएं या सजीव जीव कौन से हैं और निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन दोनों के बीच हम अंतर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, और इसमें कुछ अध्ययन बिंदु हैं, मैं पढ़ दे रही हूँ। इसमें टॉपिक 6.1 आपका जो होगा वो होगा सजीव एवं निर्जीव, उसका परिचय, यानी सजीव एवं निर्जीव का हम इसमें परिचय पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि सजीव और निर्जीव होते क्या हैं। फिर 6.2 टॉपिक में हम पढ़ेंगे सजीव एवं निर्जीव में अंतर। इस टॉपिक में आप जनरली समझोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और टॉपिक 6.3 में आप पढ़ोगे सजीवों के लक्षण, यानी लिविंग थिंग्स के लक्षण क्या होते हैं, और यानी हम इसमें पता लगाएंगे कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं लिविंग थिंग्स में जो हमें बताती है कि ये लिविंग है, यानी ये सजीव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, और टॉपिक 6.1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो है आपका सजीव एवं निर्जीव, इसका परिचय। अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचिए और बताइए कि हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इन वस्तुओं एवं जीव जंतुओं की एक सूची तैयार कीजिए तथा इन्हें निम्नलिखित सारणी के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने आसपास देखें तो आप बताइए और इसके बारे में सोचिए कि हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे इस एनवायरनमेंट में बहुत से जीव जंतु हैं और अलग अलग तरह के हैं, और इसी के साथ हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो भी बहुत सारी प्रकार की हैं। अब आपको करना ये है, जो आपको टेबल 6.1 आपको नीचे दिख रहा है, इसमें आपको उस लिस्ट एक तैयार करनी है इस टेबल में। उसके बाद आपको इन सवालों के जवाब देने हैं, जिसमें पहला है कि क्या यह वस्तु स्वयं चलकर गति करती है, भोजन करना, तीसरा श्वास लेना, और चौथा समय के साथ बढ़ना। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जंतु ये एक्टिविटी करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इन्होंने दिया है बस्ता, बस्ता यानी आपका स्कूल बैग। तो आपको बताना है क्या यह स्वयं चलकर गति कर सकता है, नहीं, क्योंकि बस्ता तो एक निर्जीव है। बस्ता आखिरकार अपने आप कैसे चल सकता है, उसको आप अपने कंधे पर टांगते हो तभी तो वो आपके साथ चलता है। दूसरा है भोजन करना, क्या आपका स्कूल बैग भोजन करता है, बिल्कुल नहीं। तीसरा श्वास लेना, क्या स्कूल बैग सांस ले सकता है, बिल्कुल नहीं बच्चों। और चौथा है समय के साथ बढ़ना, क्या उसका साइज समय के साथ बढ़ रहा है, अगर बढ़ नहीं रहा तो क्या वह घट रहा है, नहीं ना। तो इसलिए इन चारों के जवाब नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं गाय की, दूसरे नंबर पे आपकी गाय में आपको बताना है क्या वह स्वयं चलकर गति कर सकता है, हाँ बच्चों गाय तो बिल्कुल चलती है। दूसरा है भोजन करना, क्या गाय भोजन कर सकती है, जी हाँ गाय तो भोजन करती है। तीसरा श्वास लेना, क्या वह सांस भी लेती है, बिल्कुल हाँ गाय सांस भी लेती है। और चौथा है समय के साथ बढ़ना, क्या गाय समय के साथ अपना साइज बदलती है, यानी क्या वो छोटे से बड़े होते हैं, जी बिल्कुल। आपने एक छोटी गाय देखी होगी और आप देखते हैं कुछ समय बाद उसका साइज बढ़ जाता है, यानी वो बड़ी हो जाती है, तो इसलिए वह समय के साथ बढ़ते हैं। तो गाय के लिए इन चारों का जो आंसर होगा वो होगा हाँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, आगे आपको बकरी, पत्थर और कुर्सी के लिए इसमें आंसर्स फिलअप करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं एवं जीव जंतुओं जैसे मानव, गाय, बकरी, तोता, मछली आदि स्वयं चलकर गति करते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं तथा वृद्धि करते हैं। वह पेड़ पौधों में भी वृद्धि स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जबकि अन्य वस्तुओं में भी ये क्रियाएं नहीं होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, अगर आप इस टेबल को पूरा करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि कुछ वस्तुएं और कुछ ऐसे जीव जंतु जैसे कि मानव, गाय, बकरी, तोता, मछली आदि, ये ऐसे जीव हैं जो खुद स्वयं कर चल गति प्राप्त गति कर सकते हैं, भोजन करते हैं, सांस भी लेते हैं और समय के साथ वृद्धि भी करते हैं। और कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जिसमें वृद्धि जो होती है वह स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। और अब अपने आसपास कुछ ऐसी वस्तुओं को भी जानते होंगे जिसमें ये ऊपर वाली क्रिया नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, अतः वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, ये सजीव होती हैं। जैसे गाय, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, पौधे आदि, तथा जिनमें उपयुक्त क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, निर्जीव होते हैं। जैसे बस्ता, पेन, पेंसिल, रबड़, मेज, कुर्सी आदि। तो आप चित्र 6.1 में देख सकते हैं कि आपको कुछ फोटोज दी हैं, जैसे कि गाय, शेर, पौधा, ऊंट, बरगद। अब जानते हैं ये सारी जो थिंग्स है ये लिविंग थिंग्स हैं, ये सजीव हैं। और जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वे जीव जिनमें सांस लेने की क्षमता है, जो चलकर गति तय कर सकते हैं, जिनका समय के साथ वृद्धि होती है, जो जनन कर सकते हैं यानी जो आगे अपने जनरेशन को बढ़ा सकते हैं यानी अपने ही पैदा कर सकते हैं, और पोषण आदि क्रियाएं जिनमें पाई जाती हैं वे सजीव होते हैं। यानी ऐसे थिंग्स को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स या क्रिएचर्स। और इसके एग्जांपल आपको पता ही है, जानवर जैसे कि गाय, बकरी, ऊंट, शेर, पेड़ पौधे, बरगद, और हम इंसान भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसी थिंग्स जिनमें ये सारी क्रियाएं नहीं पाई जाती, उन्हें हम निर्जीव कहते हैं यानी नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। आपके आसपास आप देख सकते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि पेन, आपका स्कूल बैग, आप जिस डेस्क पे बैठे हो वो डेस्क, आपका ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48 पे सबसे ऊपर जो एक पिंक कलर का बॉक्स है, आइए देखते हैं उसमें क्या डेफिनेशन लिखी है। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं, अतः इन्हें सजीव कहते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा, जो जीव जंतु और पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन यानी किसी चीज़ की एमिशन या किसी चीज़ का बाहर आना, अगर ये सब दिखाते हैं तो ऐसे लक्षण को दिखाने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। इस प्रकार हमारे परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं वस्तुओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है सजीव, जिसमें आपके सारे पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु और माइक्रो क्रिएचर्स आते हैं यानी सूक्ष्म जीव आते हैं, और दूसरा है निर्जीव, जिसमें आपके समस्त पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त सारी अन्य वस्तुएं आती हैं, जैसे कि स्कूल बैग, आपका डेस्क, पेन, कॉपी एंड ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो टॉपिक है 6.1 वो यही कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक में जो हमने पढ़ा वो है आपका कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, और उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इनके बीच में डिफरेंस भी समझ आ ही गया होगा। और आपको जो होमवर्क मैंने दिया है वो आपका टेबल 6.1 है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 6.2, जिसका नाम है सजीव एवं निर्जीव में अंतर। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक 6.2 में है सजीव एवं निर्जीव में अंतर स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपको ये टेबल 6.2 आपके जो नीचे दिख रहा है उसको कंप्लीट करना होगा। इस टेबल में दिया है आपको क्रमांक संख्या 1 से 6 तक दी गई है। इसमें कुछ लक्षणों के नाम दिए हैं, जैसे कि जीवन काल, भोजन, श्वसन, जनन, वृद्धि और उत्सर्जन। और आपको सजीव और निर्जीव बताना है कि निश्चित जीवन काल है या इसका नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लक्षण में बात करते हैं जीवन काल की, तो जीवन काल सजीवों में हमें पता है कि ये निश्चित जीवन काल होता है, यानी कि अगर हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं या पादपों या किसी जीव जंतु की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो उनका जीवन काल होता है वह फिक्स्ड होता है, यानी निश्चित होता है। यानी कि जो उनके जीने के साल होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऑलमोस्ट हमें फिक्स्ड ही पता होते हैं। अगर हम बात करते हैं निर्जीवों, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि पेन, पेंसिल, स्कूल बैग, डेस्क, ब्लैकबोर्ड, तो हमें पता है ये तो निर्जीव हैं, इनमें तो कोई जान है ही नहीं, तो इसका मतलब इनका जीवन काल तो होता ही नहीं है। तो वैसे ही अगर हम दूसरे लक्षण की बात करें, भोजन, तो भोजन में हमें बताना है सजीवों में, तो हमें सजीवों में ये बताना है कि क्या सजीव भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हमें पता है सजीव तो भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि सजीव यानी लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आते हैं। हमें पता है प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। पिछले चैप्टर्स में प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिसके थ्रू वो अब कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और आगे जाके उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके अपने अंदर वह खाना बनाते हैं। वैसे ही एनिमल्स में भी हमने पढ़ा और ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ा कि किस तरह से भोजन उनके लिए कितना ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब सजीव भोजन प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स की, तो जिस तरह से उनका कोई जीवन काल नहीं होता, तो उसी तरह से वह भोजन भी प्राप्त नहीं करते। अगर आप खुद ही सोचिए कि आपका स्कूल बैग खाना खा सकता है, नहीं ना। तो इसलिए जो निर्जीव होते हैं वह भोजन प्राप्त नहीं करते, जबकि जो सजीव होते हैं वे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लक्षण है श्वसन, चौथा है जनन, पांचवा है वृद्धि और सिक्स्थ है आपका उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। एक्सक्रेट यानी जो हम अपने दिन भर में जो टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जो हम करते हैं, वो बच्चों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको बताना है इन सारे प्रॉपर्टीज, इन सारे लक्षणों के बारे में कि क्या यह सजीव में लक्षण है या निर्जीव में है। सो, आपका आपके होमवर्क में ये टेबल 6.2 भी ऐड कर लीजिए एंड आई होप ये आप अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करेंगे। जब आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे तो आप समझेंगे कि डिफरेंस क्या होता है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट्स कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो आप सिंपल ये सारे जो लक्षण हैं आप इसको समझाकर उसके बीच में डिफरेंसेस बता सकते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 6.3, जिसका नाम है सजीवों के लक्षण। तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ेंगे कि सजीवों के लक्षण जो अभी हमने ऊपर पढ़े वह क्या क्या होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उपयुक्त सारणी 6.2 के विवेचन से हम यह कह सकते हैं कि सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये लक्षण मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं, यानी जो अभी आपने टेबल 6.2 किया उसको पढ़कर, उसको कंप्लीट करके हम ये कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं उनके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। यानी जैसे कि जो सजीव होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सिर्फ वही भोजन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, जनन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं और एक्सक्रेट भी कर सकते हैं, जबकि ये सारे लक्षण हमको पता है नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो लक्षण होते हैं इन, ये कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं जो आपको नीचे दिया गया है। इसमें पहला है सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा। सजीव वृद्धि करते हैं, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो सजीव होते हैं, वे ग्रोथ भी करते हैं। तीसरा है सजीव श्वसन करते हैं, यानी लिविंग थिंग्स में सांस भी होती है, जैसे कि हम सांस भी लेते हैं। चौथा है सजीव स्वयं गति करते हैं, यानी जो लिविंग थिंग्स होती है वे चलकर खुद गति तय कर सकते हैं। फिफ्थ है सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, वे स्टिमुलेट करते हैं यानी उद्दीपन करते हैं और उनके उद्दीपनों के प्रति वे रिएक्ट भी करते हैं। यानी हर एक लिविंग बींग के अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। जो लिविंग थिंग्स होती है, हर एक लिविंग थिंग के अंदर खाना बनाने की क्षमता होती है और उनके अंदर एनर्जी भी होती है। सिक्स प्रॉपर्टी है सजीवों में उत्सर्जन क्रिया यानी एक्सक्रेशन। जो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स टॉयलेट का, उसको हम कहते हैं एक्सक्रेशन प्रोसेस यानी उत्सर्जन। सेवेंथ प्रॉपर्टी है सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, यानी कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और बहुत से एनिमल्स आपको पता होगा फिर रिप्रोडक्शन करते हैं जिसके थ्रू वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। और एट्थ होता है सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उन सबकी एक लाइफ होती है जो फिक्स्ड होती है कि ये इतने से इतने ईयर्स तक जी सकते हैं। अगर आप और अच्छे से इसको देखना चाहते हैं तो चित्र 6.2 में आप देख सकते हैं जो आपके राइट साइड में है, जिसमें सजीव के लक्षणों को एक सर्कल में इंक्लोज किया हुआ है, जिसमें बीच में आप देख सकते हैं सजीवों के लक्षण हैं और उसके हर एक पार्ट में सारे लक्षण आपको दिए गए हैं, यानी इसके टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं कि ये लक्षण क्या होते हैं। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, पादप भोजन कैसे करते हैं, जंतु क्या खाते हैं। आप जानते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को दैनिक कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है, यानी इसमें हमें कुछ सवाल जरूर आएंगे हमारे मन में, जिसमें जो पहला है वो है कि पादप भोजन कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ही था कि जो प्लांट्स होते हैं वे अपना खाना कैसे बनाते हैं, और इसमें हमने कई ऐसे प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा था जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जबकि वे दूसरे पर निर्भर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरा सवाल है कि जंतु क्या खाते हैं। तो हमें पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं वे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो जंतु होते हैं यानी जैसे कि हम या फिर जो एनिमल्स होते हैं वे मैक्सिमम अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। और हमें पता ही है जो भोजन होता है वो हमारे हमें दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। तो ये था कि सजीव भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, और ये सारी चीजें बच्चों हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ ही चुके हैं। सेकंड है सजीव वृद्धि करते हैं, यानी जो लिविंग थिंग्स होती है वे ग्रोथ क्यों करती है और कैसे करती है, आइए देखते हैं। अपने दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभी सजीव जंतु तथा पादप वृद्धि करते हैं। ये सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। निश्चित समय के बाद जंतुओं में यह वृद्धि रुक जाती है, जबकि अधिकांश बहुवर्षीय पादपों में यह वृद्धि होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें तो हम अगर देखें तो हम उसमें कह सकते हैं कि जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी ग्रोथ करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। और यह जो गुण होता है स्टूडेंट्स, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है लिविंग थिंग्स की, यानी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग थिंग्स का लिविंग होना। यानी अगर कोई प्लांट या एनिमल या ह्यूमन बीइंग ग्रोथ कर रहा है तभी तो हम कह सकते हैं ना कि वह लिविंग थिंग्स है, यानी वो लिविंग है, यानी वह जिंदा है। और बच्चों, लेकिन कुछ समय के बाद यह जो ग्रोथ होती है कुछ जंतुओं में रुक जाती है। अगर आप एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स का ही, तो आपने सुना होगा कि एक ह्यूमन बीइंग की जो हाइट होती है वह एवरेज 20 से 22 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद वह रुक से ही। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं जिनकी एक फिक्स टाइम तक ग्रोथ होती है और उसके बाद वह रुक जाते हैं। तो आप चित्र 6.3 के अ पार्ट में देख सकते हैं नीचे पौधों में वृद्धि। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होके एक बड़ा पेड़ बन गया। और चित्र 6.3 ब में हम देख सकते हैं जंतुओं में वृद्धि, जिसमें आपको एक रैबिट का चित्र दिखाया गया है, जिसमें आपको दिखाया गया कि जो रैबिट है पहले वह कितना छोटा होता है जब वो पैदा होता है, फिर वह थोड़ा सा और बड़ा होता है और लास्ट में वह बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये था बच्चों सजीव कैसे वृद्धि करते हैं और क्यों करते हैं, और ये कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। थर्ड प्रॉपर्टी है सजीव श्वसन करते हैं, यानी सजीव सांस लेते हैं। क्या सभी सजीव सांस लेते हैं? अब स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स में एक चीज कॉमन ये होगी कि जो सारे लिविंग बींग्स है वह सांस लेते हैं। सजीव श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं तथा श्वसन के पश्चात कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, जब एक ह्यूमन बीइंग सांस लेता है, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन गैस जो हमारे आसपास हवा में एनवायरनमेंट में है, उसको हम अंदर ग्रहण करते हैं, उसको हम इनटेक करते हैं और रिजल्ट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। और शरीर में ऑक्सीजन आने की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है वो फर्दर और आगे टूट जाता है, जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन और मिनरल्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और हमें दिन भर के कार्य करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। और इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह निकलता है, जैसे आप जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वे सांस लेते हैं। अगर हमारे अंदर सांस की कमी हो जाती है तो हमको एनर्जी भी नहीं मिलती है और इवेंचुअली हम लोग एक दिन वीक हो जाते हैं। तो इसलिए एक ह्यूमन बीइंग का अच्छी सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्या पेड़ पौधे भी में श्वसन होता है? तो बच्चों, आप बता सकते हैं क्या पेड़ पौधों में भी सांस की क्रिया होती है? जी हाँ, पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है। क्या सभी सजीवों के लिए श्वसन आवश्यक है? श्वसन के बिना सजीवों का जीवन असंभव है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए सांस लेना कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ एक प्लांट के लिए भी ऑक्सीजन रिलीज करना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह जो श्वसन होती है, यानी जो सांस लेने की क्रिया होती है, ये सभी जंतुओं में, जैसे कि जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स और हम ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, उन सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। श्वसन के बिना सजीवों का जीवन असंभव है। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी श्वसन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सजीव स्वयं गति करते हैं। आपने मनुष्य पशुओं को चलते, मछलियों को जल में तैरते, पक्षियों को उड़ते एवं सांप को रेंगते हुए देखा है। क्या पेड़ पौधे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाते हैं? क्या पेड़ पौधों में भी गति होती है? पेड़ पौधों में गति के कौन कौन से लक्षण हैं? तो स्टूडेंट्स, आपने मनुष्यों को चलते हुए देखा होगा, पशुओं को चलते देखा होगा, मछलियों को जल में तैरते हुए देखा होगा, कुछ पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, और शायद आपने सांपों को रेंगते हुए भी देखा होगा। तो जिस तरह से ये चलने वाले बीइंग्स, जैसे कि एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग्स, ये इतनी क्रियाएं कर लेते हैं, क्या जो प्लांट्स होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते हैं? क्या पेड़ पौधों में भी डिस्टेंस ट्रैवल होता है, यानी अगर वह चलकर जाते हैं तो क्या उनमें गति होती है? क्या पेड़ पौधों में गति के, और अगर ऐसा है तो पेड़ पौधों में गति के कौन कौन से लक्षण हैं? तो आइए डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को, जो आपका नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे है। तो आओ जानकारी करें। जंतु स्वयं गति कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किंतु पेड़ पौधों में गति के केवल लक्षण दिखाई देते हैं। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना पौधों में गति का एक उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या देखा, जो जंतु होते हैं वो स्वयं डिस्टेंस ट्रैवल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, परंतु आपने कभी पेड़ पौधों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए देखा है? नहीं, हम उनको जिन गमलों में उगा देते हैं वे उसी जगह पर अपनी ग्रोथ करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, जो पेड़ पौधे होते हैं वे चलते तो नहीं हैं, परंतु उनमें गति तो होती है, परंतु उनकी जो गति होती है वे होती है उनकी ग्रोथ, और जो आप देख सकते हैं जब प्लांट छोटे से बड़ा हो जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है सूरजमुखी, यानी सनफ्लावर। जो सनफ्लावर का प्लांट होता है वे सूरज की ओर अपना मुंह मोड़ लेता है, और ये दिखाता है पौधों में गति होना। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे बस, साइकिल, कार आदि भी चलती है, इनमें गति करने जैसा लक्षण दिखाई देता है, किंतु ये स्वयं गति नहीं कर सकती है। इनमें गति बाहरी कारकों द्वारा होती है। इनमें सजीवों के अन्य लक्षण नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने ये तो पढ़ लिया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वे खुद से चल नहीं सकती, ना उनमें सांस की क्रिया होती है और ना ही वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। परंतु जो लिविंग थिंग्स होते हैं वे सांस भी लेते हैं, वह चल भी सकते हैं, उनमें ग्रोथ भी होती है, वे भोजन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि आपकी जो साइकिल है, कार है, और जो आप जिस स्कूल बस से आते हो वो बस, वे सब भी एक तरह देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, परंतु ये तो चलती भी हैं और ये तो डिस्टेंस भी ट्रैवल करती हैं। पर बच्चों, इसमें और लिविंग थिंग्स में डिफरेंस ये है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, आपकी बाईसाइकिल, कार और बस, इनमें गति तो होती है, यानी कि ये चलते तो हैं, परंतु इनमें बाहरी कार्य करना पड़ता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ता है, जैसे कि इंजन हम बस में लगा, जैसे कि इंजन जो हम कार में फिट करते हैं, और जैसे कि पेट्रोल हम भरते हैं कार और बसों में। और अगर हम बात करें साइकिल की, तो साइकिल में आपको अपने पैरों से पैडल मारना पड़ता है, यानी एक बाहरी फोर्स लगाना पड़ता है जिसकी वजह से टायर्स आगे मूव करते हैं और आपकी साइकिल चलती है और वह गति करती है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है बच्चों, जो नॉन लिविंग थिंग्स होने के बावजूद भी चलते तो हैं, जो ट्रैवल तो करते हैं, परंतु लेकिन किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। पर इन सजीवों में कोई अन्य लक्षण नहीं होते, जैसे भोजन करना, सांस लेना और ग्रोथ करना। तो आई होप बच्चों, आपको ये फोर्थ टॉपिक भी समझ आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा सजीव स्वयं गति करते हैं, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स जो होते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रैवल नहीं करते, परंतु वह अपनी ही जगह पर गति करते हैं। और कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि साइकिल, कार, बाइक, बस आदि, जो नॉन लिविंग थिंग्स तो हैं परंतु उनमें गति होती है, यानी वे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अगले ऑडियो में टॉपिक 5 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्योपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो हम अगले अपनी ऑडियो में इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो टिल नाउ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।